कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। और भगवद गीता यथारूप का ब्रह्मचारियों के लिए जो भक्ति शास्त्री का अध्ययन हो रहा है उसमें चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान का, चौथे अध्याय में पांच विभाग हैं, पांच विभाग हैं चौथे अध्याय के। पहला विभाग 1 से 10 श्लोक तक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान का वर्णन भगवान के मुख से, ये है पहले 10 श्लोक। ग्यारह से 15 तक इस ज्ञान को, ये जो भगवान ने ज्ञान दिया दिव्य अपने जन्म के विषय में, अपने कर्म के विषय में, उसका उपयोग कैसे करें, दिव्य ज्ञान का उपयोग। और 16 से 24 तक तीसरा विभाग ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझना, ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझना। और इस विषय में मुख्य बात है अकर्म क्या होता है। चौथा विभाग 25 से 33 तक सारे यज्ञ सारे यज्ञ दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हैं। सारे यज्ञ दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है। और 34 से 42 तक विशेष रूप से दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो, किसको हो होता है, किसको नहीं होता है, अथवा दिव्य ज्ञान के सारांश के अंतर्गत दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो, उसके योग्यता क्या है और अयोग्य कौन है, और उसका फल क्या है, दिव्य ज्ञान का फल प्राप्त करने की विधि, फल, योग्यता और अयोग्यता ज्ञान को प्राप्त करना करने में। तो ये पांच विभाग हैं चौथे अध्याय के। कल हम पांचवा श्लोक पढ़ रहे थे, अब हमने कल के पांचवें श्लोक का अध्ययन पुनः शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच बहुने मे व्यतीतानि जनमानि तव च अर्जुन, तानि अहं वेद सर्वाणि, न त्वं वेतत् परं तप। सो भगवान कहते बहुनी मे व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन, मैंने और आपने अर्जुन बहुत जन्म बिताए हैं साथ। इसका अर्थ है कि भगवान जब अवतार लेते हैं युग युग में तो उसके साथ उनके पार्षद साथ आते हैं, तो अर्जुन भी साथ आया। तो भगवान कहते तानी अहम वेद सर्वाणी, उन सबको मैं जानता हूं, वेद का मतलब जानना, न त्वम तुम नहीं जानते हो, वेतथ परंतप, वेतथ उसको उस तथ्य को आप नहीं जानते हो, उस विशेष तत्व को तथ्य को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तो ये श्लोक है, इसका अर्थ है कि भगवान जन्म लेते हैं। तो इस श्लोक, ये श्लोक और आगे वाले श्लोक में एक चीज आपको, भगवान के अवतार लेने में और जीव के धरती के ऊपर जन्म लेने में क्या अंतर है, ये आप एक कागज पे विभाग बना लीजिए कि भगवान अवतार लेते कैसे लेते हैं और जीव का जन्म कैसे होता है। ये दो तीनों श्लोकों में आपको इन दोनों में अंतर बताना है। और जैसे भगवान कहते हैं हम कई बार आए हैं, ऐसे और श्लोक अगर आपको चाहिए जिसमें भगवान कहें कि मेरे बहुत भगवान के जन्म होते हैं, बहुत नाम होते हैं, बहुत रूप होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के नामकरण करने के समय गर्ग आचार्य ने एक श्लोक कहा है कि इसके बहुत रूप हैं, बहुत नाम है और हर युग में अवतार लेता है। तो ये श्लोक आपको ढूंढना है तो 10:8:15 गर्ग आचार्य कृष्ण के नामकरण के समय उनके बहुत रूप रंग वर्ण कहते हैं रंग को, और 10:51 में, 10वें स्कंद के 51 अध्याय 51 के 56 श्लोक में भगवान स्वयं श्री कृष्ण मुचकुंड को कहते हैं कि मैं बहुत बार जन्म लेता हूं। तो भगवत गीता को भागवत से प्रमाणिक करें कि भगवान बहुत जन्म लेते हैं। ये दसवें स्कंद के हैं 10:8 और 10:51। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने दो श्लोक तो किए हैं ब्रह्म संहिता से उद्धृत। पहले श्लोक में अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, और दूसरे में रामादि मूर्ति शो। तो भगवान के अनंत रूप है। अच्छा, एक दो दो लाइन में आपको परिभाषा लिखनी है अद्वैत और अच्युत की। इस श्लोक के तात्पर्य से अद्वैत और अच्युत की क्या परिभाषा है, अद्वैत की क्या परिभाषा है, अच्युत की क्या है, इस श्लोक के आधार पे, इस तात्पर्य से आपको एक एक लाइन में इन दोनों शब्दों को प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, ठीक है। तो ये दो श्लोक कहने से प्रभुपाद जी भगवान के नाना अवतारों का, अनंत रूपों का वर्णन करते हैं। परंतु मुख्य बात क्या है, दो श्लोक ये क्यों लिखे हैं? पहला कारण है कि इस बात को केवल वेद को पढ़ने वाले जान नहीं सकता। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, ये श्लोक लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान के जन्म को और भगवान के कर्म को वेदों से नहीं जाना जा सकता, ज्ञानी नहीं जान सकते, केवल भक्ति से जाना जा सकता है। ये मुख्य बात है। तो ये बात प्रभुपाद जी ने पहले दो श्लोकों के भाव में लिखी है। फिर दिया है एक उदाहरण, चक्रवर्ती पात्र ने यह उदाहरण दिया है और बलदेव विद्याभूषण ने यह उदाहरण दिया है। वैदुर्य मणि, एक वैदुर्य रत्न होता है, उसमें लाइट पड़ती है तो बहुत से रंग उसमें से निकलते हैं। तो भगवान है एक, लेकिन समय समय के ऊपर उनसे अलग अलग रूप रंग निकलते रहते। तो उदाहरण भगवान के अवतारों का किसके साथ दिया है? वैदुर्य मणि। ये हमारे बलदेव विद्याभूषण ने उदाहरण दिया है, प्रभुपाद जी ने उसको हमारे पुस्तक में लिखा है वैदुर्य मणि। जैसे प्रकाश पड़ने के ऊपर बहुत रंग रूप बदलती है, ऐसे भगवान कई रंग रूप बदलते हैं। और वैदुर्य मणि के उपरांत श्री प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है। अब प्रभुपाद जी लिखना क्या चाह रहे हैं? लिखना चाह रहे हैं कि अर्जुन के समान बहुत से और भगवान के पार्षद भगवान के अवतार के समय भगवान के साथ आते हैं। तो भगवान कभी अकेले नहीं होते, पहले तो ये याद रखिए, भगवान कभी अकेले नहीं होते हैं, हमेशा कोई पार्षद साथ में होगा, कोई सेवक साथ में होता होगा। तो भगवान के पार्षद सदा साथ होते हैं। अर्जुन भी ऐसा पार्षद है जो भगवान के अवतारों में भगवान के साथ होता है। एक कोई उदाहरण दीजिए जहां अर्जुन भगवान के साथ अवतार में आया हो। नर नारायण का सबसे आसान उदाहरण, नर अर्जुन, नारायण कृष्ण। नर नारायण ऋषि के रूप में बद्रिकाश्रम में धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में अर्जुन और कृष्ण आए। तो ऐसे उदाहरण तो कई जगह ऐसे उदाहरण मिलेंगे। और प्रभुपाद जी ने कल हमने कहा था, लिखा था, जब सूर्य देव को भगवान ज्ञान दे रहे थे तब भी अर्जुन साथ में था, किसी विशेष सेवा में साथ में था। ये आपने तात्पर्य में मिलेगा। अब एक बात लिखी है कि अर्जुन को भूल गया, भगवान को नहीं भूला। उसमें देखो कारण क्या है, एक जरा ये लाइन को समझिए थोड़ा ध्यान से। पहले तो प्रभुपाद जी ने यहां से ही शुरू कर दिया है कि भगवान के अवतार में और उसके नित्य सिद्ध पार्षद के उनके साथ आने में भी अंतर है। तो सामान्य जीव में तो अंतर है ही, शुद्ध जीव में भी अंतर है, वो भूल जाता है। अब क्यों भूल जाता है ये तो कल हमने एक कारण बताया था, क्या? शरीर परिवर्तन होता है। दूसरा कारण याद रख लिया आज, भगवान प्रकट होते हैं अपनी योग माया से और जीवों का जन्म होता है माया से। तो माया तो सबको भ्रमित करेगी, तो भगवान का प्रकट्य योग माया से, जीव का प्रकट्य माया महामाया से। वो तो माया के अधीन होकर जन्म लेता है, प्रकृति के तीन गुणों के अधीन होकर जन्म लेता है, इसलिए वो भूल जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, उसको ध्यान से देखिए। अर्जुन जैसे शुद्ध नित्य भगवान के पार्षद भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वो किसके द्वारा भूल, कैसे भूल जाते हैं? शरीर परिवर्तन तो ठीक है, एक और शब्द लिखा है, जरा अपना किताब खोल के उसको पढ़िए, आपको समझ में आता है। ये ऐसे लिखा है, इसको पढ़िए, देखिए यहां लिखा है, ओ ये इससे ऊपर जहां अच्युत की परिभाषा है उसके नीचे, पहले अच्युत की परिभाषा देख लीजिए। जीव कितना भी बड़ा हो परंतु भले नित्य मुक्त हो फिर भी भगवान के समान नहीं है। इसके बाद अच्युत का क्या अर्थ है? ब्रह्म संहिता के शब्द अच्युत का अर्थ है भगवान अपने अच्युत की परिभाषा निकालो, मिला? अपने अपने को, अपने को कभी नहीं भूलते, ये इसकी परिभाषा है। एक और शब्द इसके साथ लिखा है, भौतिक जगत में आने के उपरांत भी अपने विषय में कुछ नहीं भूलते, तो इसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए संस्कृत में? सर्वज्ञ है भगवान, भौतिक जगत में आते हैं तो भी सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए भगवान को अच्युत कहते हैं, कभी नहीं भूलते। इसके ऊपर, इसके नीचे क्या लिखा है देखो, इसके बाद कैसे भूलता है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। इसके नीचे क्या लिखा है जरा देखो, भगवान की दिव्य कृपा से, तो ये भक्त क्यों भूलता है? यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म बात है, भक्त माया के कारण नहीं भूलता, योग माया के कारण भक्त भूलता है, भगवान की लीला के लिए। भक्तों के ऊपर महामाया नहीं, तो आप जहां लिखा है कभी भक्त भूलता है, उसके सामने लिखे योग माया के प्रभाव से लीला के लिए, भगवान की लीला के विषय कार्य, विशेष कार्य के लिए, जैसे यशोमादी मैया भूल जाती है कि कृष्ण भगवान है, तो ये काम है योग माया का, सामान्य जीव नहीं। और जब भगवान चाहें तो उस जीव के ऊपर कृपा करें, वो जान भी जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि क्यों भक्त कैसे भूलता है कभी कभी, लीला के लिए भगवान की माया। भगवान भी कभी अच्युत हैं, कभी अपने आप को भूल जाते हैं, भगवता को, मैं भगवान हूं ये भूल जाते हैं, क्योंकि लीला करनी होती है ना। अब एक उदाहरण याद रखिए, हम कोई यहां ड्रामा करते हैं ना, कोई तो लिखता है ड्रामे का स्क्रिप्ट, क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो एक लिखने वाला, जिसने लिखा ड्रामा कि इसमें होना क्या है, लिखने वाला भगवान है, ये सही, पहले ये समझो लिखने वाला भगवान है, अभिनय भगवान करता है भक्तों के साथ, एक्टर भी भगवान है, डायरेक्टर है योग माया। तो डायरेक्टर के कारण कभी कभी भगवान भी अपने लीला में, अपन मैं लिखा है भगवान को मालूम है, फिर भी डायरेक्शन, जब योग माया जब कोई लीला कराती तो भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, वो सामान्य बच्चे की तरह रोने लगते हैं। तो जानते हैं परंतु डायरेक्टर योग माया है, वो जैसे भगवान को जो लीला करानी है वैसे कराती। और बहुत सरल शब्दों में समझना हो तो ये है कि भगवान अपनी योग माया से जब चाहें तो ढक लें और जब चाहें तो अपने आप को प्रकट कर लें। वो पर्दा है, चाहें तो छुपा लें अपने आप को, चाहें तो खोल दें, ये भगवान की मर्जी। तो अब ये दो, अब अद्वैत, इसके नीचे अद्वैत शब्द की परिभाषा देखिए, देखिए क्या है, बीच में केवल असुर नहीं समझ सकते हैं ये बात, असुरों को तो कभी यादगिरी नहीं आएगी, प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्तों को भगवान की कृपा से स्मृति आ सकती है, असुरों को नहीं आ सकती है। फिर अद्वैत की परिभाषा क्या है, बस ये महत्वपूर्ण बात है याद रखना, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, हमारे कितने शरीर हैं? कौन से तीन? स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल, कारण। असल में तीसरा जो है हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको अगर कोट बनाना है तो उसमें हाथ बनाते हो, अंदर हाथ होंगे तब ना। तो हमारा अपना एक स्वरूप है असली, उसके ऊपर है सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर है स्थूल शरीर। तो हम तो तीन हो गए, भगवान है एक, न उनका सूक्ष्म शरीर है न स्थूल है। भगवान का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है। अब एक और कारण लिखे वहां, भगवान क्यों भूलते हैं नहीं है और हम क्यों भूलते हैं, तीसरा कारण लिखो। दो कारण याद है ना, तीसरा कारण है सूक्ष्म शरीर दूसरे जन्म में ले जाता है जीव को। भगवान का सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं है तो भगवान भूलेंगे क्या? ये सूक्ष्म शरीर में सब कुछ भूल जाता है जब एक शरीर छोड़ते हैं तो भगवान को सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। अब एक उदाहरण इसका, आपको कोई कहे कि उदाहरण दो कि भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो उदाहरण क्या देंगे? कोई एक उदाहरण दो। हाँ जी, क्या? हाँ, उदाहरण बहुत अच्छा बच्चा कह रहा है। एक महात्मा दिवाली के दिन कहीं से जा रहे थे तो घर से आवाज आ रहा था अंदर से, ट्रैक्टर खाऊंगा मैया, ट्रैक्टर दे दो। दूसरा बोलेगा मोटर खाऊंगा, हाथी खाऊंगा। महाराज ने दरवाजा खटखटाया, मैया ने कहा भोग नहीं लगाए महाराज। बोला खाना नहीं है, वो बच्चे दिखाओ जो ट्रैक्टर खा रहे हैं, हाथी खा रहे हैं, तो उनसे कौन से बच्चे हैं? बोला महाराज दिवाली की मिठाई बनी है, ये ट्रैक्टर जैसी है, ये हाथी जैसी है और ये कार जैसी है सारी मिठाई, उसके अंदर ना हाथी है ना, तो भगवान का क्या पूरे का पूरा मिठाई है उसके अंदर, और कुछ नहीं है, हाड मांस कुछ भी नहीं है, सारा ही जैसे हमारी आत्मा है ना केवल, ऐसे भगवान पूरे का पूरा उस मसाले का बना हुआ है। जो हमारी आत्मा का स्वरूप है वो भगवान का पूरे का पूरा स्वरूप है। तो ये है विशेष बात, ठीक है, कि भगवान के, ये अद्वैत की परिभाषा कर रहे हैं, ठीक है। अद्वैत इसको कहते हैं अद्वैत, और अद्वैत के उपरांत लिखा है अद्वैत के पीछे एक और शब्द लाइन क्या लिखा है, भगवान से संबंधित हरेक वस्तु चिन्मय है। तो इसमें एक बात और प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं कि असुर नहीं समझ सकते हैं, भक्त समझ सकते हैं। तो ये एक बात बार बार प्रभुपाद ने क्यों लिखी है, क्योंकि भगवान के अवतार के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते हैं, भगवान को माया का रूप मानते हैं। तो उन सबको प्रभुपाद ने असुरी प्रवृत्ति में डाल दिया। तो आपको जीव और भगवान में क्या अंतर है, अब अगर लिखना हो तो कम से कम चार पांच बातें तो अभी बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ते। भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, जबकि जीव को सूक्ष्म और स्थूल शरीर होता है। एक अंतर तो ये है, बहुत अच्छा। भगवान कभी कुछ भूलते नहीं है, सर्वज्ञ सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ सर्वेश्वर है भगवान, कभी कुछ भूलते नहीं है। जीव बेचारा अल्पज्ञ है और कल क्या खाया था ये भी भूल जाता है। हाँ, दो और तीन और बता दीजिए। भगवान का प्रकट्य योग माया के माध्यम से होता है, जीव का प्रकट्य महामाया से के माध्यम से होता है। बहुत अच्छा। एक और बोलो। हाँ जी, सर और ये बताया शरीर आत्मा भगवान में अंतर नहीं है, जीव में अंतर है। और बहुत एक ऐसा शब्द है जो सबको आता है, वो भगवद गीता में कौन शब्द कौन कितने विषय है बोलिए। पांच विषयों में से कौन सा विषय है जो नित्य नहीं है? जीव कर्मों के कारण जन्म लेता है, भगवान का कोई कर्म नहीं होता। ये तो बात है कि नहीं? जीव भी अजन्मा है, भगवान भी अजन्मा है, लेकिन दोनों में अंतर है। जीव भी अजन्मा है ना, दूसरे अध्याय पढ़ा है ना, आत्मा अजन्मा है। तो तीन सिद्धांत आज समझ लीजिए। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होता है, शरीर का जन्म और मृत्यु होता है, आत्मा का आवागमन होता है कर्मों के कारण, आत्मा का आना जाना होता है कर्मों के कारण, और भगवान का अवतार होता है अपनी इच्छा से। ये तीन सिद्धांत हैं, शरीर का जन्म और मृत्यु, आत्मा का आना जाना कर्मों के बंधन से, भगवान का अवतार अपनी स्वेच्छा से। ये अंतर है इसमें, ठीक है? तो हम आगे का श्लोक पढ़ें, और भी दो चार अंतर आप ढूंढिए, मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे आपको। दो तो और अंतर आप लिख सकते हैं जो दो परिभाषाएं लिखी है। एक तो परिभाषा लिखी अच्युत की, अच्युत वाली परिभाषा, अद्वैत वाली परिभाषा, भगवान से लगेगा उनसे, एक तो हमने लिख दिया है, लेकिन वैसे लिखेंगे तो और भी कुछ आ सकता है, ठीक है? चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान ने सूर्य देव को उपदेश कैसे दिया? बोला किसी अवतार में दिया। ये भगवान अवतार के समय उपदेश देते हैं, इसका मतलब ये, क्योंकि नहीं तो तेने ब्रह्म हृदय कह देते, जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में वेद दिया, ऐसे नहीं कह रहे हैं। भगवत गीता का उपदेश किसी अवतार के काल में दिया है, चक्रवर्ती पाद ये बात लिखते हैं स्पष्ट रूप से कि इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अवतार के माध्यम से मैंने ये सूर्य देव को शिक्षा दी। तो अवतार के समय की शिक्षा है, जैसे ब्रह्मा के लिए अवतार नहीं लिया भगवान ने शिक्षा देने के लिए, उसके हृदय में दे दिया, ठीक है? तो भगवान के अनंत अवतार है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हमने पढ़ लिया, अब हम अगले श्लोक में जा रहे हैं, छठा श्लोक। कल हमने कहा था जन्म को देख के अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, तो कृष्ण को यह श्लोक कहना पड़ा, क्या? अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। एक अव्य आत्मा का शब्द आप अच्छी तरह से इसका अर्थ समझ लीजिए। अव्य का अर्थ तो सबको आता है अविनाशी, आत्मा का यह शब्द है शरीर। मेरा शरीर अविनाशी है, मेरा शरीर, क्योंकि आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, मन भी होता है, आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी होता है। यहां अव्य का अर्थ है अविनाशी, आत्मा का अर्थ है शरीर, जिसको जिसको हम कहें अच्युत, अच्युत की परिभाषा है ये। मेरा शरीर अविनाशी है क्योंकि सूक्ष्म स्थूल का कोई इसमें भेद नहीं है, ये सारा ही सच्चित आनंद है। तो आत्मा का यह अर्थ शरीर है, भगवान का स्वरूप कहा जाए। और प्रकृति जो शब्द है यहां, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ये प्रकृति का अर्थ भौतिक प्रकृति नहीं है। प्रकृति के संस्कृत डिक्शनरी में दो अर्थ और भी है, एक स्वभाव, भाई इसकी प्रकृति कैसे स्वभाव है ना, एक स्वरूप। तो मैं अपने स्वरूप में अपने स्वभाव में प्रकट होता हूं। ये प्रकृति भौतिक नहीं है, ठीक है, प्रकृति की परिभाषा अलग है, इसमें आत्मा की परिभाषा अलग है अजन्मा भगवान को सिद्ध करने के लिए। और तीसरा आत्म माया, आत्म माया का मतलब मेरी योग माया से, मेरी आत्म मतलब मेरी यम, मेरी योग माया से, और योग माया मेरी चित्त शक्ति के, योग माया एक योग माया क्या है, चित्त शक्ति, चित्त शक्ति के द्वारा, चित्त असचित आनंद है ना, चित्त शक्ति, मेरी चित्त शक्ति के द्वारा, तो योग माया से मैं प्रकट होता हूं। माया के दो और अर्थ हैं, एक माया का अर्थ तो आपको समझ में आया, योग माया मां माया दो, एक माया का अर्थ है करुणा कृपा, जैसे कहे कहीं माता बड़ी मायामयी है, बच्चे से कितनी इसका माता माया माता माया मायामयी माता, मतलब बच्चे से बहुत स्नेह करती है, करुणा करती है, तो माया का एक अर्थ है स्नेह करुणा दया मर्सी, तो भगवान जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए अवतार लेते हैं, करुणा एक अर्थ है। एक अर्थ माया का है ज्ञान, ए हमारे आचार्यों ने संस्कृत से माया का एक अर्थ निकाला है ज्ञान। सब जीवों के कर्मों को भगवान जानते हैं, यह है माया का एक और अर्थ। तो यहां एक माया का अर्थ लेके भगवान अपनी योग माया से प्रकट होते हैं, यह सामान्य अर्थ बहुत अच्छा कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। दूसरा है कृपा करके प्रकट होते हैं, तीसरा है सब अपनी चित्त शक्ति ज्ञान के द्वारा प्रकट होते हैं। तो तीन इसके आचार्यों ने तीन शब्दों का अर्थ इस श्लोक में विशेष है, किस बात को सिद्ध करने के लिए कि भगवान अजन्मा है, जन्म लेते हुए भी अजन्मा है, अजोपी अजन्मा होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी सन अव्यात्मा, ये मेरा शरीर अविनाशी है। और एक शब्द लिखा है अजन्मा तो जीव भी है, यहां ये प्रश्न उठता है ना, जीव भी तो अजन्मा है, तो भगवान आप में और जीव में अंतर क्या है, ये एक और अंतर आप उसमें लिखें लिस्ट में, मैं भूतों का ईश्वर हूं, मैं सब भूतों का ईश्वर हूं, भूतानाम ईश्वर हो सब, मैं सारे जीवों का स्वामी हूं, जीव स्वामी नहीं है वो तो सेवक है, तो जीव सेवक है भगवान स्वामी है वो भूते, ये अंतर हो गया ना एक और, भगवान में और जीव में, सर्वभूतों का ईश्वर है भगवान, जीव ईश्वर नहीं है। अब इस श्लोक में क्या भगवान बोलने चाह रहे हैं, एक शब्द में कहा जाए तो भगवान अपने सच्चित आनंद स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो भगवान के जन्म का सच्चित आनंद स्वरूप का वर्णन भगवान करने जा रहे हैं, और आगे कर्म का वर्णन करेंगे, और फिर कहेंगे जो दोनों इसको जानता है। तो ये श्लोक में भगवान के दिव्य जन्म का वर्णन है, अजन्मा होते हुए जन्म कैसे लेते हैं, तो ये एक मुख्य बात है, बाकी सबका अर्थ आपको तीन मुख्य शब्दों का बता दिया। अब श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं, स्मृति शास्त्रों का ना उदाहरण बहुत दिए हैं, बलदेव विदूषण का बहुत लंबा है तात्पर्य, चक्रवर्ती कहते हैं भगवान के प्रकट्य का भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये श्लोक भगवान के प्रकट्य का वर्णन है, ये श्लोक भगवान के प्रकट्य का वर्णन है, भगवान के दिव्य जन्म का वर्णन है, भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन है, ठीक है। शास्त्रों से बहुत उदाहरण दिए हैं और ये शब्द तो आपको बता दिए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। प्रभुपाद जी ने उन दोनों का भाव लिया है और काल पहला लाइन में क्या लिखा है, भगवान अपने जन्म की विशेषता बता रहे हैं, ऐसे ना, भगवान के जन्म की विलक्षणता बता रहे हैं। ठीक है, सामान्य जीव के समान भगवान का जन्म नहीं होता है। और फिर प्रभुपाद जी थोड़ी देर के लिए वही बात लेते हैं कि भगवान को याद रहता है और उनको भूल जाता है, ये बात थोड़ा तात्पर्य में प्रभुपाद जी पुनः लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर भगवान सामान्य लोगों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि लोग अपने आप को भगवान तो कहते हैं लेकिन कल की बात भी याद नहीं है, भगवान को तो सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वेश्वर होना चाहिए, सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सर्वव्यापक होना चाहिए। लेकिन ये प्रभुपाद जी जीव में अंतर कर रहे हैं, जीव और भगवान में अंतर कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्रकृति का भगवान ने या प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है प्रकृति का, आप देखो प्रकृति का प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है, उसको समझ लो अच्छी तरह से। प्रकृति का मतलब मेरा स्वरूप लिखा है ना प्रभुपाद जी, स्वरूप शोभा दोनों लिखे हैं ना, शोभा और सुख दोनों, ठीक है ये पक्का याद करना है। इसके नीचे लिखा है अवे आत्मा का अर्थ, देखो इसके नीचे अवे आत्मा का अर्थ है, क्या लिखा है, मैं भगवान कहते हैं कि मैं अपने स्वयं शरीर में प्रकट होता हूं, ऐसे लिखा है ना, हाँ लिखा है ना, ये है अवे आत्मा का अर्थ, ये जो लाइन है ये अवे आत्मा की परिभाषा है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। ठीक है, और इसको समझाने के लिए दूसरी लाइन में क्या लिखा है, मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे सामान्य लोगों के शरीर में परिवर्तन आता है, इस बात को समझाने के लिए नीचे दूसरी लाइन लिखी है ना, ये अवे आत्मा की परिभाषा है। इसका मतलब आपके श्लोक में अवे आत्मा का अर्थ ढूंढना है तो निकालना है तो ये जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो लाइनों के सामने आप लिख दो, ये अवे आत्मा का परिभाषा है। अब प्रभुपाद जी एक और दृष्टि से इसका उदाहरण दे रहे हैं कि हम जीवों के तो बार बार शरीर बदलते हैं लेकिन भगवान के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, एक रस शरीर है, ये दोबारा प्रभुपाद जी ऐसे लिख रहे हैं ना, जीव का कोई भी स्थाई शरीर नहीं है परंतु भगवान का श्याम सुंदर स्थाई शरीर है। स्थाई शरीर कौन सा है, श्याम सुंदर, सदा स्थाई है, श्याम सुंदर नित्य है, शाश्वत है। भगवान जब ये प्रकट होते हैं अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। अब प्रभुपाद जी तो बहुत जो कह दिया ना, क्या कह दिया प्रभुपाद ने, भगवान का शरीर स्थाई है, उस शरीर स्थाई शरीर का वर्णन कर रहे हैं। देखो लाइन में है द्विभुज श्याम सुंदर लिखा है, वेणुधारी के रूप में प्रकट होते हैं, ये है भगवान का, ये भगवान का क्या है, स्थाई रूप। चेतन महाप्रभु ने पूछा था एक बार रघुपति उपाध्याय से, भगवान का कौन सा रूप, बोला श्याम सुंदर, कौन सी आयु, बोला किशोर, कौन सी लीला, ऐसे चार प्रश्न पूछे, तो ये भगवान का स्वरूप है। ठीक है, अब ये आत्मा की परिभाषा कृष्ण के लिए क्या है, श्याम सुंदर वेणुधारी, कृष्ण के लिए ये परिभाषा है। ठीक है, अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान भले दिव्य शरीर है परंतु सामान्य बच्चे की तरह प्रकट होते हैं, और बच्चे का, अब प्रभुपाद जी भगवान की कुमार अवस्था, पौंगल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। आज एक बात और याद कर लो, भगवान का कुमार लीला भी नित्य है जब यहाँ कुमार लीला पूरी होती है, मानो कि यहाँ 3 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए, कुमार 5 साल होता है, 5 साल की उम्र को कहते हैं कुमार लीला, वो श्री कृष्ण के 3 साल में हो जाता है। कृष्ण 3 साल का 5 साल जितना लगता है, ऐसे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। तो जब यहाँ भगवान की बच्चे की लीला समाप्त हुई, तो किसी और लोक में भगवान बच्चे की लीला करते हैं, तो बच्चे की लीला भगवान की नित्य है। यहां भगवान आज प्रकट हुए, यशोदा नंद और यशोदा के यहां को छोड़िए, वो तो विशेष है, देवकी और वसुदेव को यहां प्रकट हुए आज, कल किसी और लोक में प्रकट होंगे। ये भगवान की नित्य लीला है। तो भगवान का बाल स्वरूप भी नित्य है, भगवान का किशोर स्वरूप भी नित्य है, भगवान का पोंगल बाल लीलाएं भी नित्य है, कहीं हो रही है। परंतु प्रभुपाद जी यहां विशेष रूप से कहते हैं कि भगवान किशोर अवस्था से तो बड़े होते ही नहीं है, प्रायः 16 साल से बड़े नहीं होते, लेकिन इसमें प्रभुपाद ने 20-25 लिखा है, लगते 20-25 जैसे हैं, लेकिन होते 16 के, ऐसे समझो। अब देखो 3 का 5 तो 15 का कितना हो गया,
17।
हाँ, 3 के 5, 3 साल का 5 का लगता है, तो 6 का होगा तो 10 का लगेगा, 9 का होगा तो 15 का लगेगा, हाँ, और 12 का होगा तो 20 का लगेगा, और 15 का होगा तो 25 का लगेगा। तो 15 से बड़ा होता ही नहीं है, प्रभुपाद का 20-25 का लग रहा है, वो भी सही है, प्रभुपाद की बात भी सही है, वो है सामान्य बच्चे की आयु के समान, और चक्रवर्ती पाद का भाव है कि इतना लगता है इस उम्र में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं तब तो 100 साल के बराबर होंगे, परंतु कभी भी वो 20-25 से बड़े नहीं लगते। तो प्रभुपाद जी क्या इसमें बताना क्या चाह रहे हैं कि भगवान का शरीर में जो ये 4 विभाग हैं, बाल, कुमार, पौंगल, किशोर और युवा, ये नित्य हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा होते हैं। तो बाल लीला भी नित्य है, ये बात समझनी चाहिए। अन्य भागवत में पढ़ाते हैं तो ये मुख्य बात पढ़ानी पड़ती है, नित्य लीला का मतलब क्या है भाई। एक वात्सल्य का भक्त है तो कहीं ना कहीं तो वात्सल्य लीला होगी ना, वहां जाके भाग लेगा। सखा भक्त है तो पोंगल लीला कहीं होती होगी, तो वहां जाके गैया चराएगा ना। तो ये भगवान की लीलाएं नित्य है, ये भगवान के शरीर नित्य है। 20-25 साल का लिखा है प्रभुपाद ने, और आपको कभी आप पढ़ेंगे जब रसिक शास्त्र, तो भगवान कभी 16 साल से बड़े नहीं होते, आयु इतनी लिखी है भगवान की। मालूम है ना, राजा रानी की आयु 13 साल 8 महीने, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे 14 से कम ही है, 15 से कम, 14 से कम एग्जैक्टली लिखी हुई है कितनी है। जरा कल कहाँ गया हमारा, आज वो है नहीं, हाँ हाँ जी, कहाँ छुप गया, ढूंढ के निकालना राजा रानी की आयु कितनी है एग्जैक्ट। नहीं, वो जो यहाँ बैठता है वो नाम हट वाला, क्या नाम उसका, हाँ हाँ, वो गूगल गुरु, राधा रानी की और कृष्ण की नित्य आयु क्या है, ठीक है। आज से मेरे ख्याल में कोई 10 साल पहले मैं प्रवचन दिया था, बताया था, मुझे याद नहीं है, 13 साल 7 महीने कुछ दिन ऐसे एग्जैक्टली लिखा है, 10-12 से ऊपर ही है, बहरहाल ढूंढ के निकालना पक्का काम करके, ठीक है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, 25 साल जब लिखा है, कोई कहे अब प्रचार करो, कोई कह सकता है कृष्ण की उम्र तो 16 से ऊपर होती नहीं है, 25-20 कैसे कृष्ण प्रभुपाद ने लिखा है, तब आप कहेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि सामान्य बच्चे 5 साल के, कृष्ण का 3 साल, उससे 25 साल का कृष्ण हो जाएगा 15 का, तो कोई अंतर नहीं, ठीक है ना। ये भी आपको जवाब देना पड़ेगा, लोग बोलेंगे कैसे लिखा है भाई, 25 क्यों लिखा है, 15 से बड़ा होता ही नहीं है कृष्ण 16 से, तो ये उसका अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते, आपने कभी भी कृष्ण का ऐसा कोई चित्र नहीं देखा होगा जिसमें वो बूढ़ा हो गया हो, हाँ परंतु वो सबसे पुरातन पुरुष है, सबसे पुरातन, सृष्टि से पहले का है, भूत भविष्य पहले का है। हाँ जी, 14 साल 2 महीने 15 दिन। भाई 14 साल 2 महीने 15 दिन राधा, मैंने कहा 14 मतलब 13 से ऊपर ही है, क्योंकि 12 से नीचे मंजरी होती है। 12 2 14 2 15 14 ढाई 14 साल 2.5 महीना ये राजा रानी की नित्य आयु है, किशोरी राधे। ठीक है, कृष्ण 16 के अंदर मिलेगा।
कृष्ण 1 साल 7 महीने बड़े हैं
तो 16 हो गए, और क्या, ढाई ढाई और सात,
15 साल 9 महीने 7 दिन
कृष्ण की नित्य आयु है, 16 से कमी हो गई। 15 9 7 अच्छा है ना, ये याद होना चाहिए, आना चाहिए, याद होना चाहिए कितना है 15 9 7। हरे कृष्ण, 11 साल बोलते हैं, 11 साल तक वृंदावन में भगवान ने नित्य लीला की, फिर मथुरा चले गए। वैसे कहते 3 साल 4 महीने गोकुल में बाल लीलाएं की, तब वो 5 साल के लग रहे थे, फिर आए वृंदावन में 3 साल 4 महीने 4.5 महीने यहां भी रहे, और फिर गए नंदगांव में, यहां किए ग्वाल बालों के संग लीला, सखा लीला, फिर गए वहां रासलीला करने। तो ऐसे सब मिला के 11 साल से थोड़ा कम ही है, 11 तक जनरली कहते हैं 11, 10 साल 10 महीने गया, ऐसे कुछ एग्जैक्टली ये भी निकालना है तो निकाल लीजिए कि कितने साल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में लीला की। मथुरा में शायद 17 1 साल रहे हैं मथुरा में, ये 17 11 कितने हो गए, 28, तो बाकी जो है 100 साल से 2-1 साल कम भगवान द्वारका में रहे, ऐसे जनरली ये कहा जाता है, 125 साल, कहीं 128 ऐसे कहते हैं भगवान का भूम लीला, इतने साल कृष्ण की लीला हुई। तो मथुरा में 17 बार तो जरासंध से लड़े, तो 16-17 साल तो मथुरा में रहे, और फिर 100 साल करीब 2 साल कम द्वारका में भगवान का लीला है। 125 जनरली बोलते हैं, कहीं कहीं 28-29 मिलता है, वैसे 25 नॉर्मल। अब एक बात प्रभुपाद जी और लिख रहे हैं, देखो भगवान के शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है और भगवान की बुद्धि में भी कोई परिवर्तन, ये बात समझ में नहीं आ रही। बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर में होती है, नहीं भगवान की बुद्धि में भी कोई परिवर्तन नहीं आते, इसका क्या अर्थ? बुद्धि को प्रभुपाद ने लिखा है उनकी स्मृति में, बुद्धि का काम क्या है, सुमरण, उसमें बुद्धि में सुमरण शक्ति होती है। वैसे मन सुमरण आत्मिक, मन का काम है सुमरण, बुद्धि का निर्णय करना, कुछ बात का निर्णय करना बुद्धि का काम है। वो सर्वज्ञाता, इसका मतलब भगवान की सर्वज्ञाता में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसका अर्थ ये है। फिर बुद्धि को लिटरली नहीं लेना कि हमारी तरह मन और बुद्धि और अहंकार भगवान का, ऐसा नहीं इसका अर्थ है। इसलिए भगवान भले भौतिक जगत में हो तब भी सच्चिदानंद स्वरूप में ही रहते हैं, और उनका दिव्य बुद्धि, दोबारा लिखा है, और उनका दिव्य शरीर और दिव्य बुद्धि रहती है। अब प्रभुपाद जी दे रहे एक और उदाहरण, भगवान का प्रकट्य और अप्रकट्य का उदाहरण सामान्य लोगों को समझाना है तो सूर्य का उदय और अस्त, सूर्य के उदय को कोई जन्म नहीं कहता है और सूर्य के अस्त को कोई मरण नहीं कहता है। क्यों? जब सूर्य यहाँ अस्त होता है तो कहीं और उगता है। ऐसे भगवान जब यहाँ से जाते हैं तो कहीं और लीला शुरू कर देते हैं। तो सूर्य का उदाहरण भगवान की नित्य लीला का परिचय है। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण एक सूर्य का दिया। पहले कौन सा उदाहरण दिया था? एक उदाहरण पहले भी कुछ कर दे के आया ना। हाँ, यहाँ सूर्य का तो उदाहरण है, एक और दिया था वैदुर्य मणि। दो, ठीक है, वैदुर्य मणि है नाना रूपों के लिए और सूर्य है भगवान के प्रकट्य के लिए। दोनों में भी अंतर है। अब प्रभुपाद कहते हम सूर्य को नहीं देख सकते क्योंकि हमारी इंद्रियां परिपूर्ण नहीं है। अब प्रभुपाद जी भगवान के इस भौतिक जगत में दिव्य रूप में प्रकट होने के लिए शास्त्र से उदाहरण दे रहे हैं। वेदों में क्या लिखा है? भगवान अजन्मा होते हुए भी प्रकट होते हैं और आप बहुत सारे अपने क्या लिखा है मल्टी मैनिफेस्टेशंस। वेदों में क्या, इस वेदों के बाद क्या, वेदों वाला पूरा पढ़िए। शरीर परिवर्तन नहीं करते लेकिन क्या लिखा है मल्टी मैनिफेस्टेशंस, बहु रूपों में प्रकट होते हैं। क्या लिखा है? हाँ जी, अनेक रूप, बहु रूप अनेक रूप, ठीक है। और तो वेदों का एक सप्लीमेंट लिटरेचर कॉन्फ्रेंस, भगवान अवतार लेते हैं फिर भी शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आते हैं, वेदों में लिखा है। भागवत में भी ऐसे लिखा है। हाँ, ये वसुदेव और देवकी के सामने सामान्य चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा लेकर, ठीक है। ये भगवान का असामान्य अवतार का उदाहरण है। अब प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे, ये कौन से शब्द का अर्थ है बताइए जरा। इसके उपरांत देखो क्या लिखा है, क्या है अहितुकी, ये कौन से शब्द का अर्थ है? आत्म माया का। देखो ये आत्म माया की परिभाषा है, ठीक है। अहितुकी कृपा से, ये माया का एक अर्थ है। ये कृपा क्यों करते हैं भगवान? क्या क्यों कृपा करते हैं प्रभुपाद ने उसके लिए कारण लिखा, क्या लिखा है कि जो जीव भगवान का ध्यान कर सके, उनको पता तो लगे भगवान होता कैसा है, उसके लिए कोई मनोकल्पना नहीं करें और निराकार न कहें। भगवान नहीं आए तो हम कैसे अनुभव करेंगे भगवान होता कैसे। भगवान अपनी अहितु की कृपा से प्रकट होते हैं, जीवों को ध्यान करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए, मनोकल्पना और निराकार भाव से बचने के लिए, ठीक है। अब प्रभुपाद जी माया आत्म माया के लिए अर्थ देखो, एक अहितु की कृपा अर्थ बता रहे हैं ना, हम तीन बार था आपको लिखाए उसमें ये अर्थ एक है, ठीक है। एक प्रश्न उठा है आचार्यों ने उठाया है कि भगवान मत्स्य रूप में भी आए, नरसिंह में भी आए, तो अभी आए तो वो सब कहाँ हैं? तो उसका उत्तर ये दिया है कि उनकी योग माया जिस रूप को प्रकट करना चाहती है प्रकट करती है, जिसको छुपाना चाहती है छुपा लेती है। ये भगवान की योग माया का काम है, जिस रूप को प्रकट करना है उसको प्रकट करिए। है नित्य, ये रूप सारे नित्य हैं और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो ये सारे उनके अंदर होते हैं, वो सब उन्हीं में समाये होते हैं, पर प्रकट वही होता है जिसकी आवश्यकता होती है।
वो भगवान की योग माया का काम है।
अच्छा, अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भूत, हाँ, भूतानाम ईश्वर अपि की लाइन की परिभाषा प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, देखो, भगवान अद्भुत कार्य करते हैं और क्या, अति मानव, मानव से अति मानव, ये मतलब मानव से उत्तम, मानव के सोच से भी उत्तम लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तब आ रहा है सातवां श्लोक। तो छठा श्लोक पूरा हो गया, सातवें श्लोक का शुभारंभ करते हैं। अब क्यों अवतार लेते हो भगवान, तो भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्योत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः। धर्मस्य का अर्थ क्या है इसमें, धर्मस्य का अर्थ क्या है इसमें, पहली बात देखो, भगवद गीता धर्म शब्द से शुरू होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और पूर्ण आहुति का श्लोक क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्म तत् श्री विजय गुरु ध्रुवा नीतिर्मम नीतिर्मतिर्मम, वहां धर्म शब्द नहीं है, ये धर्म, ये तू धर्मामितम यथोक्तम परिपास्ते श्रद्धानम अथवा भक्तास्ते अति में प्रिय, ये 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो ये धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, तो धर्म की परिभाषा क्या है, बोलिए कुछ विचार बताइए, क्या है धर्म का अर्थ, धर्मात् तो साक्षात भगवत परिणाम, धर्म वो है जो भगवान ने दिया, ये तो ठीक है, भगवान धर्म देने के लिए, तो धर्म है क्या, एक एक व्यक्ति एक समय, हाँ बोलिए, क्या बोला, धर्म वो है जो बदल नहीं सकता है सदा एक वो, अच्छा, जो बदल नहीं सकता है, धीर धातु के ऊपर टिका हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो कौन सा धर्म है, जीवेर स्वरूप कृत्य कृष्ण दास, यही यही धर्म है जीव का, ये जीव का स्वरूप है। सेवा जीव का धर्म है, आचार्यों ने धर्म की परिभाषा, रामानुजन आचार्य ने दी है, श्रीधर स्वामी ने दी है, हमारे आचार्यों ने बलदेव विद्याभूषण ने दी है, धर्म की परिभाषा दी, क्योंकि धर्म शब्द सभी कहते हैं, ये श्लोक तो पागल भी कहते हैं रोड के ऊपर, लेकिन धर्म की परिभाषा नहीं आती। रामानुज आचार्य कहते हैं भगवान की अर्चना धर्म है, भगवान की पूजा धर्म, भगवान की पूजा का धर्म, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं शुद्ध भक्ति धर्म की परिभाषा है, शुद्ध भक्ति देने के लिए स्वयं भगवान आते। यही बात कृष्ण को कुंती महारानी कहती है, अमल आत्मा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम, ये श्लोक मुनि नाम अमल आत्मा नाम विधान अर्थाय, आपका अवतार होता है ऐसे महात्माओं को भक्ति सिखाने के लिए, और सामान्य अर्थ सामान्य लोगों को समझाने के लिए वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना। तो धर्म के तीन अर्थ तो समझ लीजिए, आचार्य एक ने पूजा लिखा, दूसरे का श्रवण कीर्तन सुमरण अर्चन, ये विधि सिखाने वाला धर्म, और एक ने कहा अनन्य शुद्ध भक्ति वाला धर्म, वही तो धर्म है। और मेरे विचार में हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वर्ण आश्रम, तो धर्म की परिभाषा तो हो गई, क्लियर हो गई, धर्म को स्थापना करने आते हैं। अधर्म जब बढ़ जाता है इसका मतलब पाप, पाप जब बढ़ जाता है अधर्म का मतलब पाप। अब दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है सृजामि अहम्, तद आत्मानाम सृजामि अहम्, आत्मानाम सृजामि अहम्। यह सृजामि का अर्थ सृष्टि नहीं है, पैदा नहीं होता हूं, प्रकट होता हूं। यह सृजामि का अर्थ है प्रकट होता हूं, मैं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, यह श्लोक का उद्देश्य है। क्यों लेते हैं भगवान अवतार, उसका कारण बता रहे हैं। बलदेव विभूषण जो वेदों में बताया है धर्म, उसका जब लोप हो जाता है, वेदों में बताए हुए धर्म का लोप होना, सृजामि का अर्थ है मैं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूं, सच्चिदानंद रूप में, जो पहले बताया है वो। कब प्रकट होते हैं ये कोई कहे तो कोई ऐसा नियम नहीं है, भगवान की जब इच्छा हो तब होते हैं। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, अपना किताब खोलिए। पहले प्रभुपाद जी सृजामि शब्द को लेते हैं, उसका अर्थ सृष्टि नहीं है, जन्म नहीं है, शरीर का बनना नहीं है, स्वयं शरीर में प्रकट होना है। ठीक है, आपको ऐसा ही श्लोक अगर ढूंढना हो जिसमें भगवान ने ऐसे कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं, तो भागवत के नवे स्कंद के इस नवा स्कंद 24वां अध्याय 56 श्लोक में श्री कृष्ण के अवतार के लिए ऐसा ही लिखा है। जरा निकालिए 9:24:56 9:24:56 में क्या है देखो जरा। हाँ, यदा यदा ही धर्म से है ना, उधर भी वहां भी सृजामि शब्द है। तो ये श्लोक देख लेना आप, उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, अब ये सृजामि की परिभाषा प्रभुपाद ने दे दी, सृजामि का मतलब प्रकट होना। अब प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण का भाव दिया है, वैसे भगवान का नेम है प्रकट होने का, वो कौन सा नेम है यह लिखा है। कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, 7वां मनवंतर, 28वीं चतुर्युगी, द्वापुर का अंतिम चरण। परंतु भगवान जब चाहे पूर्ण स्वतंत्र है, जब चाहे प्रकट हो सकते। ठीक है, वेद शास्त्र ने धर्म के नियम बना रखे हैं, उसमें जब त्रुटियां होती हैं तो भगवान उसको पुनः स्थापित करने के लिए आते हैं। और फिर जो आपने श्लोक कहा था प्रभुपाद ने, उस धर्म की परिभाषा दी है, धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम। वेद भी पहले भगवान के मुख से ही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान के द्वारा प्राप्त हुए। तो धर्म भगवान का ये श्लोक आ गया। अब प्रभुपाद जी इस धर्म की परिभाषा बता रहे हैं, कौन सा धर्म है, गीता के अंत में है, ये देखिए जरा, सर्वधर्मान शरणागति। तो शरणागति कल आपको एक शब्द कहा था, शरणागति कौन सा धर्म है, भक्ति का शुभारंभ है शरणागति। तो भक्ति के धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान आते हैं। और सारे वेदों का शिक्षा इस शरणागति की ओर हमको ले जाती है। और असुर जब इसके अंदर बाधा डालते हैं तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। अब प्रभुपाद ने एक अवतार का उद्देश्य दिया, एक उदाहरण दिया है, बुद्ध का कब प्रकट हुआ, जब वेद के नाम में हिंसा हो गई, तो अहिंसा के धर्म की स्थापना के लिए बुद्ध, तो ये कौन सा धर्म, अहिंसा का धर्म। तो ऐसे धर्म किसी अवतार के लिए कोई विशेष धर्म की स्थापना करनी होती है, ठीक है, ये बुद्ध का उदाहरण दिया अहिंसा धर्म की स्थापना के लिए। वेदों में जो अहिंसा है उसकी स्थापना के लिए, इसलिए हर एक भगवान के अवतार का कोई उद्देश्य होता है जिसका वर्णन शास्त्रों में किया हुआ है। अब प्रभुपाद सावधान कह रहे हैं, अगर शास्त्र में वर्णन नहीं है अवतार का तो उसको अवतार नहीं माना जा सकता। दो विशेष बातें हैं, अवतार का उल्लेख भविष्यवाणी शास्त्र में होनी चाहिए और उसके कार्य अति मानवीय होने चाहिए, सामान्य नहीं होने चाहिए, अवतार तब माना जाएगा। भगवान अपनी जब इच्छा हो तब प्रकट हो सकते हैं। अब प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं, यहां लिखी है कि देखिए जरा, भगवान सारी दुनिया में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसे लिखा है, देखो जरा। हाँ, ये मुख्य बात है, भगवान सब जगह प्रकट होते हैं, होते हैं भाई, मान देवताओं के लोक में होते हैं ना, देवलोक में होते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, भाई जलचर में हो जाते हैं, मगर मछली के रूप में, कछुआ कच्छप के रूप में होते हैं, तो अन्य स्थानों में होते हैं, तो क्या अन्य लोकों में नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, यहां अवतार छह प्रकार के होते हैं, ये आपको नाम आने चाहिए, छह प्रकार के कौन से अवतार है, मनवंतर एक, लीला अवतार दो, चलो शक्ति अवेश तीन, गुण चार, पुरुष अवतार पांच, एक छठा रह गया युग अवतार, युग अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, ये छह प्रकार के अवतार हैं। पहले प्रायः जहां वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है दुनिया में, वहां भगवान के शक्ति अवेश अवतार पुत्र या प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, ये प्रभुपाद के लिखने का भाव है। पुत्र के रूप में हजरत ईसा आए पाश्चात्य देशों में, और प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद जी आए मुसलमानों के वहां, तो ये भी भगवान के शक्ति अवेश अवतार है, ये प्रभुपाद जी के लिखने का अर्थ है। ये बात समझ में आई कि दुनिया में सब जगह भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं है एक जगह लेते हैं, केवल भारत में लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये प्रभुपाद ने लिखा है ना। और फिर इसके लिए लिखा है शक्ति अवेश अवतार, पूर्ण नहीं लिखा, लिखा क्या है, पूर्ण नहीं होते, लेकिन शक्ति अवेश अवतार किसी विशेष कार्य के लिए पुत्र या प्रतिनिधि के रूप में आ सकते हैं, है ना। उसी मात्रा में उनको समझाते हैं जितना उनमें समझने की सामर्थ्य होती है। फिर आपको स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि क्योंकि भारतवर्ष में वर्ण आश्रम है, और जहां वर्ण आश्रम की स्थापना है वो केवल भारतवर्ष में है, इसके लिए भगवान उसको स्थापन करने के लिए विशेष आते हैं। एक बार का कुंभ मेले में हम थे, वो विदेशी कुछ भक्त थे, का हमारे यहाँ कुंभ मेला क्यों नहीं लगते, हमने बोला आपके बल गंगा जमुना सरस्वती है तो कैसे लगेगा, ये तीनों लाओ त्रिवेणी बनाओ तो नदियां तो सब जगह है, ठीक है, गंगा जमुना सरस्वती नहीं है, तो जहाँ वर्ण आश्रम नहीं है वहां भगवान का ये लीला गुण अवतार ये नहीं होते हैं प्राय, वहां शक्ति अवेश अवतार होते हैं। उन लोगों में जितना सामर्थ्य समझने की होती है उतनी ही बात उनको समझाते हैं और वहां से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य के टुकड़े का अर्थ है। हर जगह भगवान जब चाहे तब प्रकट हो सकते हैं, उतना ही धर्म के विषय में जानकारी देते हैं जितने वहां के विशेष लोग उस परिस्थिति में समझ सकते हैं। परंतु उद्देश्य एक ही होता है। क्या उद्देश्य होता है? भगवान के भावना को जागृत करना। उद्देश्य एक ही होता है, कृष्ण भगवत भावना का जागृति करना। देखो प्रभुपाद कभी अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, अपने पुत्र को भेजते हैं, अपने सेवक को भेजते हैं। ये दोनों उदाहरण है, एक हजरत ईसा का और एक हजरत मोहम्मद का। ठीक है, दिख रहा है ना, दुनिया में यही तो दो बड़े मजहब है। उनमें भी अवतार हो, प्रभुपाद जी मानते थे कि ये भी गुरु है। हर युग में भी भगवान अवतार लेते हैं, ये भी ध्यान रखें। युग अवतार होता है ना, तो कल युग का अवतार भी चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है, अब प्रभुपाद जी आगे क्या लिखे हैं? अब प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन को जो भगवान धर्म का उपदेश दे रहे हैं ना, ये अति उत्तम है, क्योंकि अर्जुन उन्नत भगत है। ये अर्जुन का स्तर बहुत उन्नत है, इसलिए जो यहाँ भगवान भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। असल में अगर आपको सही माना में समझना है कि भगवान कौन से धर्म का उपदेश देने आते हैं, आज याद रख लिए, वेदों के अंदर दो धर्म है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वेदों में दो धर्म है, प्रवृत्ति गृहस्थों के लिए, निवृत्ति साधु संन्यासी ब्रह्मचारी के लिए। परंतु भगवान जब आते हैं तब भागवत धर्म देने के लिए आते हैं, जो सबके लिए। भागवत धर्म का पालन मानव तो सभी कर सकते हैं, अंतर्ज्य भी कर सकते हैं, जवन भी कर सकते हैं, परंतु पशु पक्षी भी कर सकते हैं, पशु पक्षी भी कर सकते हैं भागवत धर्म का पालन। तो विशेष है भागवत धर्म, जिसके देने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता पड़ती है। और भागवत धर्म का अर्थ है भक्ति। इस भागवत धर्म का वर्णन ध्रुव महाराज के शब्दों में भी है, प्रहलाद महाराज के शब्दों में भी है, और पूरे चार अध्याय 11वें स्कंद में भागवत धर्म है नव योगेंद्रों का, उसका नाम भागवत धर्म है। और पहले स्कंद भागवत के 3रे अध्याय में भक्ति का जो साधना है, भक्ति की साधु सो नित्य भागवत सेवा से लेकर, इसको भी भागवत धर्म कहते हैं। इसी के ऊपर प्रभुपाद ने एक बार प्रवचन दिए थे, न्यू वृंदावन में एक किताब छपा था, उसका नाम था भागवत धर्म प्रवचन, उसका नाम ही था भागवत धर्म प्रवचन। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण भागवत धर्म की स्थापना के लिए आते। तो ये धर्म की एक मुख्य परिभाषा ये है। ठीक है, हम कहने आपको ये जा रहे थे असल में कि भारतवर्ष इस पूरी पृथ्वी का नाम है असल में। इसको पहले अजनाब वर्ष कहते थे, जब ऋषभ देव के पुत्र भरत हुए तब इस पृथ्वी का नाम भरतवर्ष हो गया। परंतु भारतवर्ष में भारत खंड है जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ गंगा जमुना बहती है, ये भारत खंड है। आपने देखा है जब कोई संकल्प पढ़ता है तो कहता है भारतवर्ष है, भारत खंड है। तो भारतवर्ष तो सारा है, परंतु उसके अंदर भारत खंड है। ये जो भारत खंड है, यहाँ भागवत धर्म प्रचलित होता है हमेशा, यहां से फिर पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन भारतवर्ष सारा है। महाभारत के समय में कितना बड़ा भारत था, कम से कम ये बताइए। महाभारत को छोड़ो, 50 साल पहले भारत बर्मा अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, पाकिस्तान अलग नहीं था, ये तो नेपाल तो था मेरे ख्याल में राष्ट्र था। ये तो 50 साल पहले तो भारत के ये तो इतना तो था ही ना। ये पांच देश जो है, स्वर्ण भूमि, थाईलैंड, और फिर इंडोनेशिया, और फिलीपीन, सिंगापुर, नाम है सिंगपुर, सिंह मने शेर, इसका नाम सिंगपुर से था कि शेर वहां, शेर और हिरण साथ खड़े थे, बोला ये तो बहुत अच्छी जगह है सिंगापुर। ये सारा इनको कहते थे, ये पांच, ये ये भारतवर्ष का अंग था कोई आज से 500 साल पहले, ये भारतवर्ष था, ये पांच के पांच श्री, इसको स्वर्ण भूमि तो आज अभी भी कहते हैं थाईलैंड को, और ये पूरे का पूरा इसका पांच का नाम है, पांच श्री श्री क्षेत्र ऐसे कुछ नाम था, ये तो भारत का अंग था ही। और इराक, ये पूरा मिडल ईस्ट, महाभारत के समय में शल्य जो था इराक का राजा था, पूरे मिडल ईस्ट का राजा था शल्य, वहां से आया था मादरी का भाई शल्य जो पांडु की पत्नी थी। और भगदत्त, एक राजा भगदत्त चाइना से आया था, उसके लिए लिखा था उसकी आंखें इतनी छोटी थी कि एक पट्टी बांध के इसे आंखों को खुला रखता था, नहीं तो आंखें बंद हो जाती थी। उसके बाद एक भारी भरकम हाथी था, भीम उससे लड़ते लड़ते उसके पेट को चपक के बैठ गया बचने के लिए, भीम को दिखाई नहीं दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन भीम कहाँ है, बोला वो भगदत्त के, भगदत्त हाँ भगदत्त है मेरे ख्याल में, उसके हाथी के नीचे चपका हुआ है। बोला क्या करूं, बोला पहले जो इसके माथे पे पट्टी है ना उसके ऊपर तिल मारो, जब इसकी आंखें बंद होगी तब इसको इसके हाथी को मार पाएंगे और इसको मार पाएंगे। तो पहले पट्टी को तोड़ा तो आंखें बेचारे की बंद हो गई, फिर मारा और उस हाथी के मरने का भगवान को दुख हुआ, बहुत बड़ा भारी भरकम हाथी था। तो ये कितना, मैं कहने का ये भारत कितना लंबा चौड़ा था पहले, प्रभुपाद ने तो लिखा है कि राम के समय में साउथ अफ्रीका तक सुरंग बनी हुई थी, प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ये भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह में भगवान का प्रभाव नहीं है, अभी भी कई जगह पे ये तो मंदिर मिलते हैं, इंडोनेशिया में कौन सा ये अपना वियतनाम में सब बड़े से बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर भी कहीं नहीं है, इतना उसका फोटो आता रहता, देखा है वियतनाम में। ये तो सभी अभी है, 500 साल पहले भारतवर्ष था भाई, अवशेष तो भारत के सब जगह आज भी पड़े हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अकेला बूढ़ा हूँ, पांच नौजवान मिले तो हम पूरी दुनिया को भारत बना देंगे, तब तो कहा हिंदुस्तान बना देंगे, ऐसे लिखा था। ये प्रवचन याद है ना हिंदी का प्रभुपाद जी का, हाँ याद है किसी को, प्रभुपाद जी का शब्द ये है। तो प्रभुपाद जी का आगे पढ़ते हैं क्या लिखते हैं, अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि उन देशों में धर्म और हमारे धर्म में अंतर क्या है। धर्म का उद्देश्य तो एक ही है, भगवत भावना को जागृत करना, पर दोनों में अंतर क्या है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, किसका उदाहरण क्या दे रहे हैं, गणित का, दो और दो चार भी गणित है, और जब कोई और आगे पढ़ता है एम ए करता है या पीएचडी करता है डॉक्टरेट करता है गणित में, तो वहां दो और दो का अर्थ दूसरा निकल जाता है, परंतु सिद्धांत एक ही है। पर एक इसका दूसरा उदाहरण दिया जाए तो वह है, एक छोटी पॉकेट का आपके जेब में रखने वाली डिक्शनरी होती है जिसमें शब्दों का अर्थ देखते हैं, और एक एनसाइक्लोपीडिया होती है जिसमें एक शब्द के हजार अर्थ होंगे। तो जो ये भागवत धर्म है ये तो है विश्वविद्यालय, ये बहुत इसमें सब कुछ समाया हुआ है, और अन्य जो है वो छोटे से डिक्शनरी के समान है, इन अंतर इतना है, लेकिन दोनों सिद्धांत एक ही है। ये उदाहरण मैथमेटिक का प्रभुपाद ने किसके लिए दिया है, धर्म के लिए। अन्य स्थानों पे उद्देश्य एक ही है परंतु धर्म की गहराई में अंतर है, जैसे दो और दो चार होते हैं और भी जो ये गणित है उसके अंदर बड़ा रहस्य है। तो ये उदाहरण गणित का काय के लिए है, ध्यान में रखना काय के लिए है, धर्म की गंभीरता गहराई कम ज्यादा का, परंतु उद्देश्य एक है। और उद्देश्य क्या है, एक दोबारा बोलिए, एक ही उद्देश्य है, एक ही सिद्धांत है, भगवत भावना को जागृत करना, ठीक है, परंतु कभी वो बहुत विस्तार से, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु जैसे शास्त्र में लिखा है, इतना विस्तार से लिखा जाता है, कहीं सूक्ष्म थोड़ा सा, कहीं भगवान महान है इतना कह के ही समझाया जाता है, और कहीं कितना भगवान महान है, कैसे महान है, क्यों महान है, क्या महानता है उसकी, ये विषय विस्तार से समझाया जाता है। प्रभुपाद जी ईरान में थे तो मस्जिद से अजान आई, अल्लाह अकबर। प्रभुपाद का इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ है भगवान महान है। बोला वो सत्य है, सत्य है, सही है, बहुत अच्छा, कितना महान है पूछो उनसे, कितना महान, ये पता नहीं है, क्या कर सकता है, कैसे प्रकट होता है, ये पता नहीं। तो ये प्रभुपाद जी ने गणित का उदाहरण दिया है, आप डिक्शनरी का उदाहरण दे सकते हैं, और कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? अब अंतिम लाइन को देखिए जरा, हमको एक श्लोक तो और पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम हो गया कोई, मैं सोचा 10 पूरे करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत मुख्य है, ये महत्वपूर्ण 3-4 श्लोक है, क्योंकि रोज आपके काम के प्रचार के श्लोक हैं, इसका गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो अंतिम लाइन को ध्यान दे के ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ये है धर्म की परिभाषा प्रभुपाद जी के शब्दों में, और यही है अवतारों का उद्देश्य मुख्य। ये लाइन लास्ट लाइन पढ़िए,
जैसे कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतम सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ।
नहीं, लास्ट लाइन, अवतारों का उद्देश्य है सर्वत्र कृष्ण भावना को उद्बोधित करना, उसके बाद कभी अप्रकट और अपि प्रकट होती है। देखो ये लास्ट लाइन है, किसका अर्थ है? धर्म ग्लानी भवती, जो कृष्ण भावना कम हो जाती है तो अप्रकट हो गई, और उसको प्रकट करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, ये धर्म की परिभाषा है। तो यहां आज कथा को विराम देते हैं, कल फिर आगे यहां से पढ़ेंगे। कोई भागना जल्दी नहीं है ना, पक्का आप लोगों को कोई किसी का प्रश्न है इस विषय में और? हाँ जी, क्या अनुगीता ये कौन कहते हैं कि भगवान से दोबारा अर्जुन ने पूछा गीता बताया, बोला उस वक्त मैंने योग का सहारा लेके बताया मुझे भूल गया, ऐसे बोला है ना, ये कह रहे हो? लोग कहते हैं ये, जिनको ये वो लोग हैं असल में जिनके लिए हमने कल पढ़ा था, क्या करते हैं वो, काले ने महता योगो नष्ट परंत, बताइए एक पहले उसको ये उत्तर दीजिए कि भागवत में लिखा है अर्जुन जब द्वारका से वापस लौटा कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद, बड़ा चिंता में था, बाल बिखरे हुए थे, रो रहा था, फिर उसको गीता याद आ गई और वो शांत हो गया, तो जिसने सुनी थी उसको याद आ गई, जिसने सुनाई थी उसको भूल जाएगी क्या? उसको बोलना ये उदाहरण देना कि उसको भूल जाए, जो जिसने सुनाई थी उसको तो भूल ही नहीं, जिसने सुनी थी उसको याद रही, तो सुनाने वाला क्यों भूल गया, कैसे भूल सकता है? ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ये कृष्ण है इसके अंदर जो है वो ब्रह्म है, उसने दिया है ये, और कृष्ण ने उस वक्त योग माया से दिया, वो जो योग निकल गया, और फिर उदाहरण देंगे इसका, इसको कैसे कहेंगे, अरे अर्जुन तो वही था, उसके हाथ में वही गांडीव था, लेकिन वो देखो हार गया उनसे जब कृष्ण के जाने के बाद, उसका क्या भाव है, वैष्णव भाव उसका अलग है। तो ये बहुत रहस्य की बातें हैं, उतने ही लोग समझ पाएंगे, समझा पाएंगे जितने उनके बस में है। ये 4-5 श्लोक चौथे अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण है, और चौथा अध्याय थोड़ा सा है भी टेढ़ा, बहुत काफ़ी टेढ़ा है, मुझे माफ, दूसरे अध्याय थोड़े जल्दी भी हो सकते हैं, तो कोई चिंता करने की जगह, आप संतुष्ट हैं इस श्लोक है? इसी के अंदर सब होता जाता है। आप देख लो आज के ये इन श्लोकों में जो अभी तक 8 तक के अभी करो, बाद में करोगे तो मुझे भी भूल जाएगा कृष्ण की तरह और आपको भी भूल जाएगा। अभी तत्काल करो तो अच्छा है। देखिए अब पहले 8 श्लोकों में कौन से प्रश्न निकालो। आज तो सर आज तो रोटी खा लो, प्रसाद पालो आज, कल पहले आके आपके प्रश्न क्या है उसी को डिस्कस करना, तो आके आए दिमाग में बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। काम तत्काल करो, नहीं तो वो ऐसे हमारे जैसा ही होगा। कल आप एक महीने के बाद जब पूरे हो जाएंगे, 10 दिन में अध्याय पूरा हो उसके बाद, ऐसे 4 दिन में ये अध्याय पूरा करते हैं जनरली। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपके साथ थोड़ा सा, क्यों आप प्रचारक हैं, मंदिर के अंदर रहने वाले हैं, तो मंदिर का खा रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ और ज़्यादा सामर्थ्य होना चाहिए, सामान्य के समान नहीं होना चाहिए। और पैसा दे के नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरी बात ये है, पैसा दे के पढ़ते हैं तो उतना ही पढ़े। एक मास्टर पढ़ा रहा था, लिखा था बोर्ड के ऊपर, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल, अंग्रेजी में लिखा था फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल, समझते हैं उसका मतलब, एक गोले का गोले घेरे का जो है बिंदु निकालो। तो मास्टर पढ़ा रहा था फाइंड दी केंटर ऑफ ए सर्किल, तो उसने बोला सेंटर ऑफ द सर्किल, बोला तनख्वाह इतनी मिलती है जितना पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो जाओ। तनख्वाह देते इतनी और सेंटर कौन पढ़ाएगा। तो ये क्या है, ये है असल में, इसको कहते हैं निर्गुण स्टडी। ये जो ये निर्गुण, इसको कहते हैं निर्गुण स्टडी। इसको आपको एक एक शब्द प्रभुपाद जी के रहस्य को देखो, उसमें कितनी गहराई है, कौन से शब्द का कहाँ लिखा है, थोड़ा इसकी ये जैसे हमारी भागवत महारानी है, ये निर्गुण है, 7 दिन में हो है, वो रजोगुण की है, उसका नाम ही राजसिक भागवत, करते हैं कभी बोलना पड़ता है लेकिन वो रजोगुण का है। 1 महीना कम से हो तो सतोगुण का है, मासिक अगर करे तो उसको सात्विक कहते हैं, और जो ऐसे रोज पढ़े वो निर्गुण है। तो ये हमारा अध्ययन निर्गुण होना चाहिए कि भक्ति के स्तर पर होना चाहिए। हम तो चलो भागा दौड़ी करेंगे आगे चले, जल्दी ऐसी होगी तो, अभी तो नहीं कर रहे। तो इसमें कल प्रश्न लाना भाई, ठीक है, इतने विभाग में जितने आगे उसको निकाल के लाओ पहले। चलो भाई ये माला पहनो, तेरे को कल तक याद रहेगा, आजा वैकुंठ आजा, माला उतर गई तो भूल जाएगा। हरे कृष्ण।